नमस्कार भारत, तारीख 14 सितंबर, दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। इमरान खान ने कहा कि वो भारत प्रशासित कश्मीर के लोगों के लिए वो करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा।
नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा।
विवेचना में 1941 में साप्ताहिक अखबार ब्लिट्ज शुरू करने वाले रूसी करंजिया की कहानी।
जो जलते हुए सवाल थे पब्लिक के सामने, उनके ऊपर बिना किसी हिचक के साफ शब्दों में, जो कि जनता को छू जाए, उन शब्दों में वो अपनी बात करते थे।
हिंदी दिवस के मौके पर सुनिएगा एक कविता, साथ ही होगी अखबारों की समीक्षा भी। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत अपने हिस्से के कश्मीर में जो कर रहा है उसे अतिवादी सोच पैदा होगी। साथ ही उन्होंने कश्मीर से कर्फ्यू हटाने की मांग की और कहा कि वो इस मसले को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में उठाएंगे। अमेरिका और ब्राज़ील ने अमेज़न में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। ब्राज़ील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराउज़ू ने अमेरिका में कहा कि अमेज़न में नई नौकरियां पैदा करके और वाणिज्यिक पहलों से उसे बचाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राज़ील की क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देश अपनी समस्याओं से निपटने में सक्षम है। दुनिया भर में अमेज़न के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अमेरिका में मौजूद हमारे दोस्तों को ये पता है कि ये सच नहीं है। हमें नई पहलों, नई नौकरियों की ज़रूरत है ताकि अमेज़न के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जा सके। ये थे ब्राज़ील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराउज़ू के शब्द। अमरीका और तालिबान के बीच शांति वार्ता रद्द होने के बाद तालिबान की तरफ से वार्ताकारों की एक टीम रूस में मौजूद है। रूसी मीडिया के मुताबिक तालिबान के अधिकारी मोहम्मद सोहेल शाहीन ने अफगानिस्तान के लिए रूस के विशेष दूत जमीर काबुलफ से मुलाकात की। ये बैठक शुक्रवार को राजधानी मॉस्को में हुई। इस बैठक के बाद मोहम्मद सोहेल ने कहा कि दोनों के बीच अफगान शांति प्रक्रिया में हाल के घटनाक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। गाम्बिया की सरकार देश के पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति याया जामे के खिलाफ भ्रष्टाचार, चोरी और आर्थिक संकट पैदा करने के आरोप लगाने वाली है। शुक्रवार को हुई इस घोषणा से पहले याया जामे के कार्यकाल के दौरान हुई आर्थिक गतिविधियों की जांच रिपोर्ट सामने आई थी। उनका कार्यकाल करीब 20 साल तक रहा था। सरकार का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति द्वारा देश को पहुँचाई गई क्षति बेहद गंभीर है। सरकार संसद से उनके खिलाफ आरोप लगाने की मांग करेगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने चेतावनी दी है कि वो शरणार्थियों के लिए यूरोप जाने का रास्ता फिर से खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तरी सीरिया में सुरक्षित जोन बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता तो वे ये फैसला कर सकते हैं। तुर्की में इस समय 30 लाख से भी ज़्यादा शरणार्थी मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर सीरिया से आए हैं। आगे भी इदलिब से और शरणार्थी आने की संभावना है। राष्ट्रपति अर्दोगान ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि उन्होंने शरणार्थियों की देखभाल में आने वाले खर्च को लेकर जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल से बात की। मैंने उन्हें बताया कि उन्हें 6 अरब यूरो से ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि तुर्की पहले ही 40 खरब डॉलर खर्च कर चुका है। लेकिन अगर जरूरी कदम नहीं उठाए जाते तो हम ये भार अकेले नहीं उठा पाएंगे। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान के शब्द। कनाडा के एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कैमरन ऑर्टिस नाम के अधिकारी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में एक सिविलियन सदस्य हैं। उन्हें इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख और पूर्वी एशियाई मामलों का विशेषज्ञ बताया जाता है। हॉलीवुड अभिनेत्री फेलिसिटी हफमैन को कॉलेज एडमिशन में धोखाधड़ी के एक मामले में 14 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर $30,000 का जुर्माना लगा है और सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी है कि भारत प्रशासित कश्मीर में दमन से हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में कल एक जलसे को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर के लोगों के लिए वो काम करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा।
मैं कश्मीरियों, कश्मीर का मसला इस वक्त इंसानियत का मसला है। 40 दिनों से हमारे कश्मीरी भाई बहने बुजुर्ग बच्चे कर्फ्यू के नीचे हैं और मैं आज खास तौर पे नरेंद्र मोदी आपको यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ बुजदिल लोग ऐसा इंसानों पे जुल्म करता है।
इमरान खान ने भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस पर भी निशाना साधा। इमरान खान ने कहा कि भारत न केवल कश्मीरियों को बल्कि 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को भी इंतहा पसंदी यानी कि अतिवाद की तरफ धकेल रहा है।
मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना। पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो।
तो इमरान खान ने नौजवानों से नियंत्रण रेखा अभी पार न करने को कहा, लेकिन ये भी कहा कि वो ऐसा करें लेकिन उनके कहने के बाद, उनके संदेश की प्रतीक्षा करें। आखिरकार वो क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्लेषण के लिए हमारे सहयोगी संदीप राय ने बात की इस्लामाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से।
चरमपंथ को लेकर खुद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में काफी लंबे समय से घिरा हुआ है। इस बयान से क्या पाकिस्तान पर जो इल्जाम लगते हैं वो पुख्ता नहीं होंगे?
जी बिल्कुल, उसमें जो एक बहुत खतरनाक बात उन्होंने की, जो एहतजाज के लिए लोग आए हुए थे अक्सर नौजवान ही थे, और उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जाना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त वहां जाना है। तो इस स्टेटमेंट को कुछ लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि ये उनका जो माजी में प्रॉक्सीज और मिलिटेंट्स की तरफ इशारा है कि जब पाकिस्तान की सरकार चाहेगी तो वो पत्ता भी खेल सकती है। तो इस वजह से हो सकता है जरा इंटरनेशनली उनको, अगर ये स्टेटमेंट पिक हुई और इस पर उनको उनसे सवाल पूछे गए तो फिर वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। जो मिलिटेंसी का अभी तक तो सरकार ने जो ऑफिशियल पॉलिसी है कि वो इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन जो उन्होंने ये बात की है उससे लगता यही है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं भारत को कि ये पत्ता भी अभी भी टेबल पे मौजूद है। तो होना अब यही है, शायद पाकिस्तान सरकार भी यही समझ रही है कि यूएन में जाके शायद जो एक ऐलान पाकिस्तान को करना चाहिए वो यही है कि शिमला एग्रीमेंट को अब खत्म तस्वर किया जाए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ है दोनों देशों को। तो वो अगर फैसला होता है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जरूर उसका नोटिस लेगी, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट की वजह से ही समझा ये जाता है कि दोनों देश एक दूसरे को कंट्रोल में रख पाए हैं और कोई मजीद बड़ी जंग दोनों के दरमियान युद्ध नहीं हो सका है। लेकिन अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो फिर एक खदशा जरूर बढ़ जाएगा युद्ध का इस रीजन में।
अभी पाकिस्तान ने कुछ व्यापारिक रिश्तों को बहाल किए जाने का फैसला लिया था। करतारपुर साहिब के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। ऐसे में इमरान खान के कड़े बयानों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में कोई फर्क आने की संभावना आपको दिखाई दे रही है?
देखिए, जो अफेक्ट पड़ा है वो तो यही है कि समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई या बस सर्विस थी वो बंद हो गई। इसके अलावा तो कोई इकोनॉमिक फ्रंट पे इतना ज्यादा वो नजर नहीं आ रहा, और यही कंट्रडिक्शन पाकिस्तान की पॉलिसी में नजर आ रही है कि आप समझौता एक्सप्रेस तो नहीं चलने दे रहे, बस नहीं चलने दे रहे, लेकिन करतारपुर आप चाह रहे हैं कि नवम्बर में खुल जाए। तो ये किस तरह की पॉलिसी है, ये किस तरह का दबाव आप भारत पर लेकर आ रहे हैं? तो सवाल तो यहाँ पूछे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार यही कहती है कि करतारपुर अलग एक इशू है और बाकी इशूज अलग हैं जो कि आम आदमी की समझ में नहीं आ रहे। तो देखना यही है कि एक तरफ आप अगर ट्रेड दोबारा शुरू करते हैं, प्याज और टमाटर दोबारा आने जाना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या रह जाता है भारत पर दबाव डालने के लिए? ये छोटे छोटे स्टेप्स ही थे जो पाकिस्तान ने लिए थे, तो लगता नहीं है कि वो कोई ऐसे इकोनॉमिक फैसले करना चाहते हैं जिससे खुद देश को नुकसान हो, क्योंकि इकॉनमी पाकिस्तान की पहले ही काफी मुश्किल में है। तो भारत के साथ टेंशन ऐसी इस हद तक तो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया देख सके कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है, लेकिन अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे।
इमरान खान के भाषण का विश्लेषण कर रहे थे हारून रशीद। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगट ने हरियाणा पुलिस की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। बबीता भारतीय जनता पार्टी सरकार की खेल की नीतियों की आलोचना करती रही हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या वो चुनावी मैदान में उतरने की सोच रही हैं? उन्होंने बात की हमारे सहयोगी सत सिंह से।
राजनीतिक में मैं इसी मकसद से आई हूँ कि लोगों की सेवा के भाव से। दूसरा, पॉलिटिक्स में आने का एक ये भी रीजन है कि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी से मैं जुड़ना चाहती थी, जो कि मुझे बीजेपी से अच्छी और कोई पार्टी नहीं लगी, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो मुझे बहुत प्रभावित कर गए। जैसे ट्रिपल तलाक बिल, महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत बड़ा ये फैसला था ये बिल पास करना। दूसरा, जो हमारे कश्मीर जो हमारा मुद्दा रहा है हमेशा सालों साल हम देखते आए हैं।
चुनाव कहाँ से?
चुनाव देखिए, पार्टी जहाँ से भी मुझे लड़ाना चाहेगी, जो भी मुझे जिम्मेदारी देना चाहेगी, दादरी हो, बाढड़ा हो या फिर किसी भी क्षेत्र से, तो मैं हमेशा तैयार रहूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो फाइटर होते हैं उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो हम हर चीज में हमेशा तैयार रहते हैं, ये हमने बचपन से सीखा।
जब हम आपके ट्विटर को देखते हैं तो आप तो मुद्दे के ऊपर किसी से कोई समझौता नहीं करते, उसको स्पष्ट बोलते हैं। अगर पार्टी में रह गए तभी आपको लगा कि खिलाड़ियों की आवाज सुनी नहीं जा रही, तो क्या आप?
बिल्कुल, खिलाड़ियों की आवाज सुनी नहीं गई, इसीलिए मैंने पार्टी मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि जब हम लोग एक खिलाड़ी होने के नाते हम एक्सपर्ट हैं गेम के अंदर, तो हमें आगे आएंगे तभी हम अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे और तभी हम अपनी बात समझा भी पाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई महिला पहलवान बबीता फोगट से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी सत सिंह।
बीबीसी इंडिया बोल।
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को भरना पड़ रहा है भारी भरकम जुर्माना, लेकिन सवाल बरकरार, चालान की रकम बढ़ा देने से क्या सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग पाएगी? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त कॉल करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो शाम को हमें आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी और इस समय वक्त है अखबारों के पन्ने पलटने का। कमलेश, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
आज के अखबारों में जैसे मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें खबर है कि आयकर विभाग की मुंबई इकाई ने जाने माने कारोबारी मुकेश अंबानी के परिवार के सदस्यों को कालाधन कानून के तहत नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस जो है कई अन्य देशों से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच के बाद भेजा गया है। हालांकि रिलायंस के प्रवक्ता ने अखबार को जवाब देते हुए लिखा है कि हम आपके ईमेल की सभी बातों का खंडन करते हैं जिसमें नोटिस मिलने की बात भी शामिल है।
और मैं देख रहा हूँ कि जनसत्ता की सबसे पहली खबर, जो सबसे बड़ी लीड खबर है, वो है कि दिल्ली में फिर से ऑड इवन लागू होने वाला है। सम विषम ये योजना जो है वो 4 से 15 नवंबर तक योजना लागू होगी।
जी, कई अखबारों ने इस पर खबर दी है, साथ ही कुछ अखबारों ने भी दिया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है
कि इस कदम की कोई जरूरत नहीं
है। बिल्कुल, इसकी जरूरत नहीं है, सरकार के पास दूसरी योजनाएं हैं। इसके अलावा एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में और है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हो गया है, जो कि नीरव मोदी पर जो मामला चल रहा था पंजाब नेशनल बैंक का, उसी सिलसिले में ये नोटिस जारी हुआ है। हिंदुस्तान अखबार के पहले पन्ने पर एक तस्वीर के साथ खबर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत हुई है।
3 सीटें जो हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मिल गई।
जी बिल्कुल, और विजेताओं की तस्वीर भी दी गई है। साथ ही एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये कई अखबारों में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है देश के लिए समान नागरिक संहिता तैयार करने पर सरकार से पूछा है कि कब तक ये होगा, कि कोर्ट के प्रोत्साहन के बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया है।
समान नागरिक संहिता की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। और पार्टी में यानी कि कांग्रेस पार्टी में बिगड़ते अनुशासन पर सोनिया गांधी ने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश। वक्त है विवेचना का। आज के ज़माने के पाठकों के लिए रूसी करंजियां और ब्लिट्ज भले ही बड़े नाम ना हों, लेकिन एक ज़माने में इन दोनों की तूती बोला करती थी। रूसी करंजिया भारतीय पत्रकारिता का बड़ा नाम थे, जिन्होंने 1941 में साप्ताहिक अखबार ब्लिट्ज का प्रकाशन शुरू किया। उनका आदर्श वाक्य था फ्री, फ्रैंक और फियरलेस। उनकी 107वीं जयंती पर याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
I felt that not enough importance was given to the voice of the people. While they claimed that vox populi is vox dei, the voice of the people found just a little corner, say 6-7 inches.
मैंने महसूस किया कि भारतीय अखबारों में आम आदमी की आवाज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। उनकी आवाज को बहुत मुश्किल से 5 या 6 इंच की जगह मिलती थी पूरे अखबार में। इसलिए मैंने तय किया कि मैं ऐसा अखबार निकालूंगा जिसमें आम लोगों के मिजाज और दिल की धड़कन को जगह मिल सके। इस तरह ब्लिट्स का जन्म हुआ।
ये आवाज है रूसी करंजिया की, जो 60 और 70 के दशक में भारतीय पत्रकारिता के स्तंभ माने जाते थे। खोजी पत्रकारिता का जो रूप हम आज देखते हैं, उसकी नींव करंजिया ने कई दशक पहले रखी थी। उन्होंने फरवरी 1941 में एक टेबलॉयड की शुरुआत की थी और ब्रिटेन पर जर्मनी के हवाई हमले ब्लिट्सक्रीग के नाम पर उसका नाम ब्लिट्स रखा था। ब्लिट्स का आदर्श वाक्य था फ्री, फ्रैंक और फियरलेस, और करंजिया के नेतृत्व में इन मूल्यों को जीवित रखना ही ब्लिट्स अखबार की पहचान बन गई थी। 15 फरवरी 1912 को क्वेटा में जन्मे रूसी करंजिया के पिता आंखों के सर्जन थे, जिन्होंने एडिनबरा में ट्रेनिंग ली थी। उनकी मां क्वेटा के अमीर परिवार से आती थी। उनका मुंबई के चौपाटी बीच के सामने एक घर हुआ करता था जिसका नाम था क्वेटा टेरेस। मशहूर लेखक ज्ञान प्रकाश ने अपनी किताब मुंबई फेबल्स में करंजिया का बेहतरीन चित्रण खींचा है।
बंबई के सेंट जेवियर स्कूल और विल्सन कॉलेज में पढ़ने के बाद करंजिया पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाना चाह रहे थे, ताकि बाद में वो ICS की परीक्षा के लिए बैठ सकें। लेकिन तभी एक मासूम शरारत ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने अपना नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया के लेटर्स टू एडिटर कॉलम के लिए कई पत्र लिखे। जब अखबार के उपसंपादक आइवर जेहू को उनकी असली पहचान का पता चला, तो उन्होंने करंजिया को टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी देने का प्रस्ताव कर दिया, जिसे करंजिया ने स्वीकार कर लिया। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें इवनिंग स्टैंडर्ड अखबार के साथ ट्रेनिंग के लिए लंदन भेज दिया। लेकिन उस गंभीर अखबार की ट्रेनिंग उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने मसालेदार टेब्लॉइड डेली मिरर के साथ काम करना शुरू कर दिया।
वापस लौटने पर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक जबरदस्त स्कूप किया। वो महाराजाओं जैसे कपड़े पहनकर मुंबई के ताज होटल में होने वाली इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की गुप्त बैठक में शामिल हो गए और उसका पूरा ब्यौरा अपने अखबार में छापा। इस खबर के लिए उन्हें 1,000 रुपए मिले, जो जमाने में एक बड़ी रकम हुआ करती थी। बाद में उन्होंने अपने इस अनुभव पर एक किताब भी लिखी, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। उसी दौरान उन्होंने गांधी के वर्धा आश्रम में जाकर गांधी के बारे में एक आलोचनात्मक रिपोर्ट छापी थी। एक इंटरव्यू में करंजिया ने बताया था,
I wrote a very nasty piece on Gandhi for the Times of India publication. I think it was the Evening News. And I was very friendly with a girl, Babs Talia Khan. Her father was a judge of the Bombay.
मैंने गांधी के बारे में बहुत गंदा लेख लिखा। मेरी वैप्स तलियार खां के साथ दोस्ती थी। उन्होंने एक बार मुझे खाने पर बुलाया। वहाँ पहली बार मेरा सामना जवाहरलाल नेहरू से हुआ। उन्होंने नेहरू से कहा कि कल मैंने गांधी पर जो लेख आपको दिखाया था, ये साहब उसके लेखक हैं। नेहरू ने मुझे ऐसा लेक्चर दिया कि मैंने अगले ही दिन गांधी को पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी। इतना ही नहीं, इस लेख से मुझे जो 250 रुपए मिले थे, वो भी मैंने महात्मा गांधी के हरिजन फंड को दान कर दिए।
यहीं से करंजिया पहली बार नेहरू के संपर्क में आए और आजीवन उनके मुरीद रहे। लेकिन इसके बावजूद टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रबंधन ने उनके स्थान पर फ्रैंक मोरेस को संपादक के पद के लिए ग्रूम करना शुरू कर दिया। उन्होंने टाइम्स की नौकरी छोड़ कुछ दिनों के लिए पहले संडे स्टैंडर्ड और फिर मॉर्निंग स्टैंडर्ड का संपादन किया। फिर 1941 में उन्होंने अपना अखबार शुरू किया, ब्लिट्स। इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई के सज वर्तमान प्रेस से सिर्फ 3,000 रुपयों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार और करंजिया के साथ काम कर चुके आनंद के सहाय बताते हैं।
एक तो इतने ज्यादा अखबार थे नहीं उस वक्त, वो वीकली ब्लिट्स निकलता था, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी, 3 भाषाओं में। और जो सबसे जो जलते हुए सवाल थे पब्लिक के सामने, उनके ऊपर डायरेक्ट बिना किसी हिचक के बिना किसी इनहिबिशन के साफ शब्दों में जो कि जनता को छू जाए, उन शब्दों में वो अपनी बात करते थे। टैबलॉइड जर्नलिज्म था तो पीछे एक तस्वीर भी होती थी, ब्लिट्ज का जो बैक कवर भी बड़ा मशहूर था। एक तो वो जैसे कि ब्रिटिश टैबलॉइड में है ना, वो औरतों को दिखलाना एक मॉडल को या इस तरह के, लेकिन साथ साथ ख्वाजा अहमद अब्बास उनका कॉलम छपता था आखिरी पन्ने पे।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिट्स का दफ्तर भूमिगत हो गए कांग्रेस के वामपंथियों की पनाहगाह बन गया। अखबार ने अपने लंदन संवाददाता रफीक जकारिया के जरिए नेहरू की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। जब जेल में रह रहे नेहरू को ब्रिट्स के अंक नहीं पढ़ने दिए गए तो करंजिया ने यह मामला लॉर्ड सोरेनसन के जरिए हाउस ऑफ कॉमन्स में उठवाया। 25 सालों के अंदर ब्रिट्स के पाठकों की संख्या बढ़कर 10 लाख के करीब हो गई। आर के करंजिया का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। उनका बातचीत करने का सलीका तो बेहतरीन था ही, उनकी राजनीतिक समझ भी बहुत पैनी थी।
खुद बड़ी वो अट्रैक्टिव शख्सियत थे उनकी, बड़े कलरफुल और बहुत वेल मैनर्ड। वो पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे पारसी कम्युनिटी के, जो कुछ कुछ अंग्रेजी अंदाज भी होता था और बातचीत करने का ढंग और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लोगों से मिलजुल के रहना और साथ ले चलना, वो बड़ी बात थी क्योंकि उनका वो एक वो सोशलिस्ट अंदाज भी था। उनके अखबार में जाओ तो पहले तो आपको दिखेगी एक छोटी सी छवि, उसमें लिखा जाता था कि यू हैव टू बी क्रेजी टू वर्क हियर बट इट पेज। वहाँ के जो माहौल जो था वो अखबार का बहुत ही अलग था।
आर के करंजिया आम संपादकों से हर मामले में भिन्न थे। आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता ने करंजिया पर एक दिलचस्प लेख लिखा था, मोर देन ए मैवरिक।
वो 70 के दशक के संपादकों की तरह बिल्कुल नहीं थे। खुशवंत सिंह, गिरिलाल जैन, श्यामलाल और मुलगांवकर, इन सभी संपादकों की एक खास छवि होती थी, बेतरतीब, अव्यवस्थित, थोड़े ज्यादा ही व्यस्त और थोड़े किताबी। इन सबके विपरीत रूसी करंजिया किसी 7 सितारा होटल के मालिक दिखते थे। उनकी बड़ी मूंछें होती थीं और वो स्टाइलिश सफारी और लाउंज सूट पहना करते थे। उनके जूते भी बहुत फैशनेबल होते थे। एक बार मैंने उनको लिफ्ट के पास अपनी गर्लफ्रेंड का चुंबन लेते हुए देख लिया। वो जरा भी शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों में अपनी आंखें डाली और आंख मार दी। उनसे मुलाकात का मतलब होता था ताजा नारियल पानी पीना और विदेशी मामलों का पाठ पढ़ना। उनकी मेज पर सुकार्नो, नासिर, नेहरू और टीटो की तस्वीरें रखी रहती थीं और वो हर एक के बारे में मजेदार किस्से सुनाया करते थे। गप्पे मारने का उन्हें बेहद शौक था। सुकार्नो की आशिकी के बारे में तो वो पूरी किताब लिख सकते थे। उनके कमरे के बाहर आते समय मुझे मशहूर लेखक और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास मिल जाते थे। वो या तो अपने कॉलम लास्ट पेज की कॉपी देने आए होते थे या फिर अपनी तनख्वाह लेने। करंजिया अपने फ्रीलांसरों को प्रति कॉलम पैसे नहीं देते थे, बल्कि हर महीने के अंत में तनख्वाह की तरह उसका भुगतान करते। अब्बास को हर महीने 5 रुपए के करारे नोटों की 500 रुपए की गड्डी दिया करते थे।
करंजिया ने दुनिया के हर बड़े नेता का, चाहे वो फिडेल कास्ट्रो हों, जमाल अब्दुल नासिर हों या फिर मार्शल टीटो, सबका इंटरव्यू लिया। नासिर तो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान रिपब्लिकन ऑर्डर ऑफ मेरिट उन्हें दे डाला। विवादों को हवा देना, चुटीली हेडलाइंस लगाना और बेबाकी करंजिया की शख्सियत की खास बात थी। मैंने आनंद सहाय से पूछा कि अपने मातहत पत्रकारों के साथ करंजिया का व्यवहार कैसा होता था।
बहुत फेर, बहुत फेर, बहुत फेर। कभी कभी टेम्पर में आ गए, कुछ कहा। एक बार मेरे साथ हुआ दिल्ली में, कुछ कुछ फोन पे कुछ कुछ बोलने लगे, हमें उनकी भाषा पसंद नहीं आई। मुंबई से हमको फोन कर रहे थे तो मैंने भी फोन पे जवाब दिया कि देखिए आप अपनी बोली ना नहीं बदलेंगे तो मैं भी इसी लहजे में आपसे अभी बात करूंगा सबके सामने। तो चुप हो गए। फिर जब आए तो हमने कहा तुम बच्चे हो, बिल्कुल नादान हो, तुम ये नहीं समझते हो कि मैं जो फटकार लगा रहा था तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा था, वो तो औरों के लिए कर रहा था जो तुमसे सीनियर सीनियर लोग बैठे हैं ऑफिस में। तुमको हमने एक टैग बना लिया, ये समझिए। एक बार मुझे तैश आ गया, किसी ने बम्बई से किसी लड़के ने कहा कि मेरी तनख्वाह कट गई, क्या हो गया। तो मैंने रूसी को लिखा, माय डियर रूसी, आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड टू हियर दिस। अगर ऑफिस आपका नहीं दे सकता इस बच्चे को पैसे, तनख्वाह से काट लेगा, तो मेरी तनख्वाह से काट के आप उसको दीजिए। बहुत खफा हुए हम पे। हमसे कहा कि तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, तुम हमारा काम करने दोगे हमको या नहीं करने दोगे, उसके साथ क्या मामला हुआ तुम्हें डिटेल्स भी नहीं मालूम है और तुम बड़ी शेखी झाड़ रहे हो, तुम बंद करो ये सब। एक बार उन्होंने कब से जवाब दिया हमको, मैं चुप रहा। रूसी में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक सड़क का भिखारी भी उनके ऑफिस में पहुंच जाए बम्बई में, और कोई रोक टोक नहीं था, कोई भी जा सकता था, और वो आपको दरवाजे तक नीचे तक छोड़ने आते थे।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, तो क्यों ना इस मौके पर आपको एक कविता सुनाई जाए। तो सुनिए हिंदी के लोकप्रिय कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता मेरी भाषा के लोग। कविता पाठ कर रही हैं रूपा झा।
मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वो पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। कहती वो कुछ नहीं, पर बिना कहे भी जानती है मेरी जीभ कि उसकी खाल पर चोटों के कितने निशान हैं, कि आती नहीं नींद उसकी कई संज्ञाओं को, तुकते हैं अक्सर कई विशेषण, पर इन सब के बीच असंख्य होठों पर एक छोटी सी खुशी से थरथराती रहती है ये। तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, पूछ लो मेज से, दीवारों से पूछ लो, छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे मनहूस पहाड़, कहीं मिलेगा ही नहीं इसका एक भी अक्षर। और ये नहीं जानती इसके लिए अगर ईश्वर को नहीं तो फिर किसे धन्यवाद दे। मेरा अनुरोध है, भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध, कि राज नहीं भाषा, भाषा भाषा, सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का बूंद बूंद अर्क कि मैं जब भी इसे बोलता हूं तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहां तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज भी सब बोलता हूं जरा जरा जब बोलता हूं हिंदी। पर जब भी बोलता हूं यह लगता है पूरे व्याकरण में एक कारक की बेचैनी हूं, एक तद्भव का दुख तत्सम के पड़ोस में।
भारत की भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा सुना रही थी मेरी भाषा के लोग केदारनाथ अग्रवाल की कविता। और अब माफ कीजिएगा, और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूं रेखा। सबसे पहले बात टेनिस की। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल बांजा लुका बोस्निया एंड हर्जेगोविना में चल रहे एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने क्रोएशियाई के मातिजा पेकोटिच को 6-1, 6-1 से सीधे सेटों में हराया। उन्होंने इससे पहले रूस के इवान नेदेल्को को 6-3, 7-6 से हराया था। छठी सीड सुमित का अगला मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के फेडेरिको कोरिया से होगा। और अब बात एथलेटिक्स की। भारतीय एथलीट दुती चंद इस महीने दोहा में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दुती को IAAF ने 100 मीटर में भाग लेने का न्योता दिया था, जिसे भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने स्वीकार कर लिया है। AFI ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 9 सितंबर को 25 सदस्यीय टीम घोषित की थी। दुती 100 मीटर में 11.24 का क्वालिफाइंग मार्क हासिल करने में नाकाम रही थी। इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 400 मीटर में क्वालिफाइंग मार्क हासिल करने वाली अंजलि देवी के नाम पर अभी तक मोहर नहीं लगी है। AFI ने उन्हें 21 सितंबर को NIS पटियाला में होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा लेने को कहा है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दी। अमरीका और तालिबान के बीच शांति वार्ता रद्द होने के बाद तालिबान के अधिकारी ने रूस में अफगानिस्तान के लिए रूस के विशेष दूत से मुलाकात की। गाम्बिया की सरकार देश के पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति याया जामे के खिलाफ भ्रष्टाचार, चोरी और आर्थिक संकट पैदा करने के आरोप लगाने वाली है। सरकार संसद में इसकी मांग करेगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने चेतावनी दी है कि वो शरणार्थियों के लिए यूरोप जाने का रास्ता फिर से खोल सकते हैं। अगर उत्तरी सीरिया में सुरक्षित जोन बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता तो वो ये फैसला कर सकते हैं। कनाडा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।